ओम शांति। तो अभी का सत्र मुरली रिवीजन है। इसमें केवल आपको सुनना नहीं है, लेकिन आपस में लेन देन करना है। तो यदि आप पीछे बैठेंगे तो कैसे आप बताएंगे? इसलिए जो पीछे बैठे हैं वो आगे आकर के बैठे हैं, और बीच वाली लाइन में बैठे हैं तो यहाँ सामने अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप ही लोग हैं। उसके बाद जब क्लास होगा तो भले अलग अलग बैठ सकते हैं, अभी तो नजदीक बैठ सकते हैं। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर गीत सुना कि मुरली अमृत की धारा है, और ये अमृत की धारा क्या करती है? सभी दुखों से छुड़ा देती है। कितना सुंदर गीत। तो सबसे पहले आप सभी ये मुरली में सुनते हैं कि जब भी मुरली सुनने के लिए बैठते हैं तो कैसे बैठना होता है? हाँ, बहुत सुंदर बात बताई। बाबा की मुरली में हमेशा आता है कि जब भी मुरली सुनने बैठो तो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बैठो। अगर हम ऐसे साधारण तरीके से बैठते हैं तो क्या होगा? भल मुरली सुनेंगे, लेकिन हाल से बाहर निकलते ही कोई अगर पूछेगा आज बाबा ने क्या कहा, सारा भूल जाएगा। और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बैठेंगे, आत्मभिमानी स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो मुरली का पूरा रस मिलेगा, मुरली की एक एक बात अंदर में समाती जाएगी। और बाबा क्या कहते हैं मुरली सुनने के लिए, क्या याद रखो? हाँ, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान हमें परम धाम से पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इस निश्चय में बैठो। तो जब इस निश्चय में बैठेंगे, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं, भगवान का विद्यार्थी हूं, परम धाम से रोज बाबा हमें है ना पढ़ाने आते हैं, मुरली के एक एक महावाक्य पद्मों की कमाई का आधार है, तो अगर इस निश्चय और नशे में बैठेंगे तो मुरली का रस मिलेगा। और बाबा कई बार कहते हैं कि मुरली सुनते समय ये कि जब आप मुरली सुन रहे हो तो वो सीन सामने लाओ, जैसे जो बाबा कह रहे हैं, बाबा स्वर्ग की बातें कर रहे हैं तो स्वर्ग की सीन सामने ले आओ, बाबा परम धाम की बातें कर रहे हैं तो परम धाम की बातें देखो। आप एक स्टोरी की किताब है, आप पढ़ते हैं पूरा का पूरा किताब आपको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीन हम इमर्ज करते जाते हैं, वो दृश्य लाते जाते हैं। तो यदि आप चाहते मुरली भी हमें याद रहे तो मुरली का वो सीन सामने, जैसी बाबा की मुरली चल रही है, जो लहर चल रही है, वो सीन सामने लाते जाओ। और बाबा विशेष मेरे से बातें कर रहा है ना, मुरली सुनते समय इस स्वमान में बैठ करके सुनो कि बाबा मेरे से बातें कर रहा है, बच्चे ये करना है ये नहीं करना है, तो बातें कर रहा है भगवान से, हमारी बातें हो रही है। और एक संकल्प ले लो कि जो आज बाबा ने कहा वो हमें करना ही है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तो करने की तो बात बहुत दूरी रही, अगर हमें मुरली ही याद ना रहे, अगर याद ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? तो याद रहे उसके लिए जब हम मुरली तो एकाग्रचित होकर के सुनना, और सुनने के बाद में आपस में एक दूसरे से लेन देन करना। जैसे मुरली सुन करके आप जा रहे हैं तो आपस में है ना, आज बाबा ने क्या कहा। अच्छा, कई बार कई कहते हैं कि अगर हम सामने वाले से कुछ पूछते हैं बाबा ने क्या कहा तो वो हमें और ही आंख दिखा देता है, तुम बहुत ज्ञानी बने हो। मतलब कई बार ऐसा भी होता है, हम संकोच करते हैं कि ये क्या बोलेगा क्या कहेगा। तो आप अनजान बनकर के पूछो कि उसको उसके अहम को ठेस ना लगे, आप ऐसा कहो आज मेरे को वरदान नहीं याद आ रहा है, आप जरा बताएंगे आज का वरदान क्या है, तो जरूर क्योंकि उसको भी याद नहीं है, तो आप सुना करके कहो अच्छा ये वरदान था, तो वो भी खुश हो जाएगा हाँ हाँ यही वरदान था, है ना। तो कहने का भाव हमें कोई ना कोई युक्ति रच करके उसको सुना देना है, तो जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो वो बातें हमें याद रहती है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुरली का एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना, जब हम चिंतन करते हैं तो वो खजाना हमारा अपना बन जाता है, वो जीवन में कभी भूलता नहीं है, वही समय पर काम आता है। जो जिसके अंदर चिंतन करने की आदत है उसका योग बहुत अच्छा लगेगा, उसको ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी। तो रोज की मुरली के एक पॉइंट लेकर के चिंतन, और चिंतन करने का सबसे अच्छा लिखना, अगर हम लिख लेना एक बात लेकर के तो बस बात ही मत पूछो, आपको ऐसा लगेगा अंदर में बहुत सारा खजाना भरा है लेकिन कभी उसको हम मौका ही नहीं देते। तो जब लिखते हैं ना तो अंदर से नई नई बातें इमर्ज होने लगती है, और फिर जब ज्ञान का खजाना बढ़ता है तो दूसरों को भी सुनाने की इच्छा करती है। तो ये सब कुछ बातें थी, है ना। जब भी हम मुरली सुनने बैठते हैं तो इन सब बातों का हम ध्यान रखें। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा, सबको बाबा का परिचय दो, क्या एक बाप से लेन देन करो, तीसरा बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। तो पहली बात, सबको बाबा का परिचय देना। मुझे याद आ रहा है कि एक अव्यक्त मुरली जो हमारे सामने ही बाप दादा की अव्यक्त मुरली चली, तो उसमें बाबा ने कहा कोई भी आत्मा बाकी ना रहे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, ये तो हमारा पड़ोसी है ना, जानता तो है ना कि ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, इसको बताने की क्या जरूरत है, इसको तो पता ही है ना। तो बाबा ने कहा आपका अड़ोसी है, पड़ोसी है, आजू बाजू मित्र संबंधी, दुश्मनी है, मित्र है, किसी से आप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, नाराज है, एक बार सबको परिचय देना बहुत 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 जरूरी है, नहीं तो अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो वो आपको उलाहना देगा कि आप हमारे पड़ोसी, हम आपके पड़ोस में रहते थे, आप रोज ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते थे और आपने हमें एक दिन भी नहीं बताया। कई बार हम ऐसा सोच कर रहे हैं, अरे तो जानता है ना, इतने बार प्रदर्शनी लगी में है ना, और हमें देखता ही है रोज, तो भले वो आपको देखता हो जानता, लेकिन आपका फर्ज है बताना। और अगर आप नहीं बोल सकते तो बाबा ने कहा उसके पास ईश्वरीय संदेश का पर्चा ही, लेकिन एक बार आप अपना अपना कर्तव्य निभाओ, चाहे घर की बात हो, मित्र संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, लेकिन एक बार तो उसको। मुझे याद आ रहा कि प्रकाश मणि दादी अंतिम समय में शांति स्तंभ पर खास करके क्लास में ये कहा करती थी कि अच्छा, भारत में एक भी गांव बाकी ना रहे और विदेश में एक भी देश बाकी ना रहे। ईश्वरीय संदेश, कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। कोई है जो ऐसा रिजल्ट सुनाएगा, या ऐसा कोई है जो पान का बीड़ा उठाएगा कि हम पूरे विश्व में एक भी देश बाकी नहीं रहेगा। ऐसे कितनी, आप सोचिए, इन शब्दों से पता चलता उनके अंदर कितनी लगन थी कि बाबा को सारी दुनिया में प्रत्यक्ष कर दो। तो बड़ी दादी के साथ में एक मोहिनी बहन रहती थी, तो मोहिनी बहन हंसी हंसी में कहा दादी आपकी इतनी बड़ी तमन्ना है कि कोई देश बाकी ना रहे, तो आप ऐसा करो मुझे एक हेलीकॉप्टर खरीद दो, बस मैं सारी दुनिया में जाकर के सेवा करके आ जाती हूँ। तो दादी ने कहा हेलीकॉप्टर क्या बड़ी बात है, कितने में आता है? आप सोचिए उनकी लगन देखिए, कितने में आता है, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन आप सेवा करने के लिए तैयार रहो। तो ऐसा हमारे अंदर है। अच्छा, आप कई बार कई माताएं कहती हैं ये तो बात सब ठीक है, लेकिन हम तो गृहस्थी वाले, घर में कारोबार, घर में इतना कारोबार होता है, घर से ही छुट्टी नहीं मिलती एक मिनट के लिए, अब हम ज्ञान किसको ढूंढेंगे समझ हैं बताने के लिए। या कई माताएं कहती हमारा तो है ना गला ही नहीं खुलता, है ना मेरा आवाज है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें होती है, हमारा कारोबार ऐसा है, घर गृहस्थी का जंजाल ऐसा है, कहाँ जाएंगे। कहना बहुत सहज है लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कठिन है, ऐसा है। या कई कहते हम ज्ञान ही नहीं सुना सकते, हाँ मेरा मुख नहीं खुलता। तो हम देखें और बातों में तो हमारा मुख खुल जाता है, हम घंटों घंटों और ज्ञान। और अगर आप ये समझते हो हम नहीं सुना सकते हैं तो बाबा उसके लिए एक विधि बताई है, आप घर में रह करके कारोबार में व्यस्त होते भी ज्ञान सुनाने वाला मार्ग जमा कर सकते हैं। सुनो कैसे, और ये कार्य दादी ने किया, जानकी दादी ने विदेश में। अब वो विदेश में गई, वहां पर तो सब इंग्लिश भाषा जानने वाले, तो उन्होंने और बाबा ने उनको कहा तुमको मधुबन बनाना है मधुबन बनाना वहां भी तुम। जब जानकी दादी ने कहा बाबा मैं वहां पर तो सब इंग्लिश मुझे तो है ना, और हम कैसे वहां स्पीच करेंगे, कहा नहीं बच्ची तुम वहां पर रहोगे तुम्हारे द्वारा सेवा होती रहेगी है ना, उसको मधुबन बनाना है। तो फिर दादी वहां बैठ करके मनसा सेवा करती थी, जैसे कि आत्माओं को आह्वान करना। बाबा कई बार कहते ना कि सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ, गोले के चित्र के सामने बैठ जाओ, अब कभी ऐसे अनुभव करो कि सामने हमारे सामने हजारों आत्माएं बैठे हैं, उनको ज्ञान सुना रहे हैं। तो आप भी यदि आप चाहते हमारे सेंटर में आत्माओं की संख्या बढ़ जाए, तो आप जहां पर हैं उस एरिया में आप संकल्प करो कि इस जो भी आप संकल्प तो करना है ना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो भी आप संकल्प करना चाहो, इस एरिया में जितने भी देवी देवता कुल वाली आत्मा हैं सब हमारे सामने उपस्थित हो जाएं, ठीक है ना। इस एरिया में 10-15 किलोमीटर की एरिया में जितने भी देवी देवता कुल वाली आत्मा है जो ज्ञान में अभी तक नहीं आई है और वो ज्ञानी आत्मा है, उनको आना है भविष्य में, वो सारी आत्माएं इमर्ज हो जाएं। आप देखो सब फरिश्ते रूप में हमारे सामने इमर्ज हो गए, और उनको ज्ञान सुनाना चालू करो, आत्मा के बारे में सुनाओ। पर कोई आपसे क्वेश्चन थोड़ी करने वाला है, आप मन से ही तो सुना रहे हैं ना। आप इमर्ज करो कि हजारों आत्माएं हमारे सामने, लाखों आत्माएं हमारे सामने हैं, और हम उनको आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में सुना रहे हैं। आप देखेंगे आपका, आप यहां पर ये संकल्प करके, ये विजन बना करके आप ये सेवा कर रहे हैं, उधर उन आत्माओं को आपका साक्षात्कार होगा और वो आएंगी, वो आए और अपना अनुभव सुनाएंगे कि जैसे आपको तो मैंने देखा फरिश्ते रूप में आप हमारे सामने आए। हाँ, दादी जानकी जी के पास कितने विदेशी आए, कहे अरे आपको मैंने देखा आप फरिश्ते रूप में हमारे सामने आए थे। तो दादी इधर योग कर रही हैं, इधर मनसा सकाश दे रही हैं, सूक्ष्म संकल्पों द्वारा उधर ज्ञान सुना रही हैं, उधर उनको साक्षात्कार हो रहा है और वो आत्माएं आ रही हैं। तो ये भी एक नई प्रकार की सेवा हो जाएगी, ये तो कर सकते हैं ना। इसमें तो मुख खुलने की बात नहीं है, मन से ही तो ज्ञान सुनाना है, कोई भी सुना सकते हैं। और आप इस प्रकार से आपका ज्ञान का चिंतन उसमें भी हो जाएगा। तो इसलिए जो बाबा ने कहा सबको बाबा का परिचय देना है और एक बाप से लेन देन, अभी ये समय है सबसे हिसाब किताब फिनिश करने का, किसी से हिसाब किताब बनाने का नहीं है ना। तो बाबा ने कहा जो कुछ है ना बाबा के साथ, अगर हमने किसी के साथ हिसाब किताब बनाया तो क्या होगा, उसी के पास फिर आना पड़ेगा। तो अभी हमें हिसाब किताब खत्म करना है, कितने जन्मों का हिसाब किताब खत्म करना है, 63 जन्मों का, और भाग्य कितने जन्मों का बनाना है, 21 जन्मों का। तो इतनी बड़ी जवाबदारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी कि 63 जन्मों का हिसाब किताब खत्म करना, 21 जन्मों का भाग्य बनाना, और फिर भी अगर हम हिसाब किताब बनाते रहेंगे, छोटी मोटी भूले करते रहेंगे, तो हम अपने आप से पूछें कब हम 63 जन्मों की हिसाब किताब चुकतू करेंगे, कब हम 21 जन्मों का भाग्य बनाएंगे। और पिछले हिसाब किताब तो हमारा जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन इस जन्म में ज्ञान में आने के बाद जानबूझ करके अगर हमने कोई विकर्म किया, नया खाता बनाया, हिसाब किताब बनाया, तो जल्दी से खत्म नहीं होता, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ना, ज्ञानी को एक गुना तो मैंने अज्ञानी को एक गुना तो ज्ञानी को 100 गुना, क्योंकि 100 गुना प्राप्ति तो 100 गुना। एक बार मेरे मन में आया संकल्प कि प्राप्ति वाली बात तो हमें समझ में आती है ना, प्राप्ति वाली बात तो सबको ही समझ में आएगी, लेकिन ये जो बाबा कहते हैं एक का 100 गुना सजा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम बाबा के बच्चे है ना, और 100 गुना सजा है ना। प्राप्ति तो हमारा अधिकार है, हम भी है ना उसमें तो प्राप्ति में तो आगे ही रहते हैं। तो मेरे संकल्प आया कि हाँ देखो, हम उसके बच्चे हैं, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार बनता है, है ना, उसका जो खजाना सो हमारा खजाना। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि एक का 100 गुना, हाँ हमें क्यों 100 गुना मिले, बाहर वालों को मिले। तो इसका उत्तर बाबा कहते ना कई बार कि आपके अंदर जो प्रश्न उठता है, दूसरे दिन देखना मुरली में उसका उत्तर आ जाता है। आपने नोट किया होगा, कोई भी बात होगा आप उसको आप अपने मन को शांत कर लो, और दूसरे दिन आप मुरली में देखना कि जरूर उसका उत्तर मिलेगा। तो दूसरे दिन उत्तर आया कि एक का 100 गुना प्राप्ति तो एक का 100 गुना सजा कैसे। जैसे आपने कोई अच्छा, आपने सेंटर पर जाना चालू किया, है ना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपने सेंटर पर जाना चालू किया, आपको देख करके दूसरे ने किया, दूसरे को देख करके तीसरे ने किया, तीसरे को देख कर आपके पीछे जितने लोग भी करेंगे, आपका तो अपना खाता बना ही, लेकिन जितने लोग भी करेंगे उसका थोड़ा थोड़ा शेयर आपके खाते में जमा होगा, क्योंकि आप निमित्त बने, है ना, अनेकों को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी प्रकार दूसरी बात, आपने सेंटर पर आना बंद किया, आपको देखकर दूसरे ने बंद किया, दूसरे को देखकर तीसरे ने, तो जितने लोग भी बंद करेंगे उसका उसका घाटा भी तो हमारे ऊपर ही तो आएगा ना। तो दोनों बात है, प्राप्ति भी, तो इस प्रकार से 1000 गुना प्राप्ति और 1000 गुना। मुझे याद आ रहा है कि जब ये ज्ञान सरोवर स्थान तो ले लिया गया, लेकिन बनाने के लिए परमिशन नहीं, तो उसी समय यहाँ पर एक गवर्नर थे डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी करके, तो उन्होंने इस स्थान को पास किया, वो बाबा के बच्चे बन गए और काफी क्लोज में आए, बाबा से भी मिलने आए। तो बाबा ने उस आत्मा को जो वरदान दिया, आप बात आप सुनिए उसका वरदान, बाबा ने उसके लिए क्या कहा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम ज्ञान सरोवर बनाने के निमित्त बने हो, इसलिए ज्ञान सरोवर में जितनी भी सेवा होगी 1% तुम्हारे खाते में जाता रहेगा। देखे आंध्रा के सीएम थे। आप सोचिए कितने, हमें तो हैरान हो गया, इतना बड़ा वरदान। हाँ भगवान देव जिसके ऊपर कहते हैं ना मेहरबान हो जाए, हाँ तो अब वो आत्मा तो भले चली गई, लेकिन ज्ञान सरोवर जब तक यहां सेवा होती रहेगी 1% उसके खाते में। तो इसी प्रकार एक एग्जाम्पल, इसी प्रकार हम भी सेंटर पर कोई भी तन से मन से धन से किसी भी प्रकार की सेवा की, हाँ सेवा के निमित्त बने, अब उस सेंटर पर जब तक वो सेंटर रहेगा, जब तक वहां पर आत्माएं आएंगी, जितनी भी आत्माएं आएंगी ज्ञान योग सीखेंगी, उन आत्मा का कल्याण होगा, 1% हमारे खाते में जाता रहेगा, क्योंकि हम निमित्त बने हैं वहां पर किसी न किसी तन से मन से धन से किसी न किसी प्रकार से सहयोग करने के।
तो ये थोक में जमा करना है ना खूब है। तो हम ये ना सोचे हमें सेवा का चांस मिलता है हाँ तो आप बहुत खुश होना चाहिए। कई बार हमारे पास सेवाधारी भाई बहने आते हैं तो वो कई माताएं आती हैं कि सारे लोग चले जाते हैं और मुझे ही रोका जाता है, हम ही है क्या माताएं तो कहती माँ और देखो और भी तो हैं, जैसे मना सब्जी में है या रोटी में है, सब्जी पूरी हुई लास्ट में सारे लोग चले गए और दो चार लोग बचे, उनको कहा गया हाँ भाई ये थोड़ा सा समेट दो, ये चटाई समेट दो, ये टेबल समेट दो, है ना। तो उसको लगेगा देखा सारे लोग चले गए, हम ही दिखाई पड़ते हैं, हमें ही रोज है हम इनको सहज मिलते हैं और कोई नहीं है क्या, हम ही दिखाई पड़ते हैं क्या। तो मैं कहता हूँ माता जी आप ये सोचो, उस समय ये नहीं सोचो कि हम ही दिखाई पड़ते हैं, आप नाराज नहीं होना, आप ये सोचना वाह मेरा भाग, बाबा ने सबको भेज दिया, बाबा मेरा ही भाग बनाना चाहता है ना। अगर दूसरे लोग रुकते तो उसमें वो भी करता तो मेरा कट हो जाता, अब पूरा का पूरा भाग हमें ही मिलेगा, है ना। ये सोचो ना कि पूरा, और मेरी सेवा दूसरों को अच्छी लगती तभी तो मेरे दूसरे को क्यों नहीं कहा गया, मुझे ही कहा गया, मेरी सेवा जरूर पसंद आई तभी तो मुझे कहा गया ना। तो मैंने कहा इस प्रकार पॉजिटिव सोच करके आनंद रहो ना, सेवा का चांस ये भगवान के यज्ञ की सेवा है। और यज्ञ की दुनिया में भी कहावत है, यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का ही हाथ लगता है, ब्राह्मण आत्माएं शूद्रों को अलाउ नहीं होता है। यहां पर भी जो पवित्र ब्राह्मण आत्मा होती है उन्हीं को यज्ञ सेवा की नसीब, यज्ञ सेवा कहो या सेंटर पर आपको सेवा के लिए कहा जाता है। तो सेवा का भाग मिलना ये बहुत बहुत भाग्य की निशानी है। अगर हमें भाग्य नहीं मिलता किसी भी कारण से, या मिलता है तो हम कोई ना कोई बातें आ जाती है या कोई ना कोई कारण आ जाता है, तो वो कारण निमित्त मात्र है। हमें अपने अंदर देखना चाहिए हमारे अंदर कोई शूद्रपन का संस्कार है जो सेवा से वंचित कर रहा है। तो सेवा करना बहुत बहुत अपना भाग्य समझना चाहिए। अच्छा अभी हम एक मिनट के लिए पूरी तरह से है ना शरीर से डिटैच होकर के बैठेंगे और स्वयं को बहुत तेजोमय आत्मा रूप में देखेंगे। स्वयं को देखेंगे, मैं मस्तक के मध्य बहुत बहुत तेजस्वी आत्मा, मुझसे चारों ओर तेज प्रकाश फैल रहा है। मैं बहुत बहुत पवित्र, संपूर्ण पवित्र, परम पवित्र, पवित्रता का सूर्य हूं। मेरे अंग अंग से प्योर वाइब्रेशंस फैल रहा है। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर,
मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान से कंबाइंड मैं अनंत शक्तिवान, जो शक्तियां शिव बाबा में वही मुझ में, ओम शांति। प्रश्न में बाबा ने क्या कहा आज? आज का प्रश्न, बच्चों से भूले क्यों होती रहती, क्या कारण बाबा ने बताया? क्योंकि योग में कच्चे हैं, और अगर बाबा की याद रहे, बाप की याद रहती है, तो कोई भी कोई भी बुरा काम हो नहीं सकता। तो आज भी बाबा ने कहा कि बाबा को सच्चा पोता मिल दो, कोई भी भूले नहीं हो। अगर भूल हो जाती है तो क्या करना है? भूले हो जाती तो क्या करना है? बाबा को बताना है। बाबा को बताएंगे तो फिर क्या होगा? आधा माफ हो जाएगा। आधा माफ का मतलब ये नहीं कि एक बार बाबा ने कहा, अगर आपने भूले किया तो भूले के भूल का तो दाग मिट नहीं सकता। हाँ, ऐसे नहीं कि हम भूले करते रहे, है ना? बाबा ने कह दिया ना, माफ हो जाएगा, करते रहो, बाबा को बता दो, माफ हो जाएगा। तो जब हम, लेकिन बाबा कहते मुझे बताओ, तो बाबा को बताने का मतलब ये है कि जब हमसे भूल होती है और हम बाबा को बताते हैं, तो बाबा से शक्ति मिलती है, बाबा से ताकत मिलती है ना, बाबा से हमें वरदान मिलता है, हमारा मन शांत हो जाता है, आगे से फिर वो भूले होगी नहीं। और बाबा को नहीं बताएंगे तो दिल खाता रहेगा, सिर के ऊपर बोझ रहेगा, जैसे योग नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। बाकी कहो, जो विकर्म हो गया वो खत्म हो जाए, वो खत्म होगा योग से ही। इसलिए बाबा ने कहा, कोई भी भूले हो जाती है तो बाबा को सच सच सुना दो। आप प्रैक्टिकल में देख लो, आपके बच्चे से अगर कोई गलती हो जाती है और आपको आकर के सच सच बता देता है, तो फिर आप क्या करते हैं? उसको माफ करते हैं, आप उसको और ही प्यार करेंगे। अच्छा ठीक है, आगे से तुम ध्यान रखना, आगे से नहीं करना ना, ऐसे आप उसको बताएंगे, आगे से ध्यान रखना, आगे से नहीं करना, और उसको आप प्यार करेंगे कि हाँ देखो इसने सच्चाई से बता दिया। और अगर वो भूले किया, भूल करके भी आपसे छिपा रहा है, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे? लगाएंगे एक चाटा, एक तो गलती करके आया है और झूठ भी बोल रहा है ना, यही करेंगे ना, गलती भी किया और झूठ भी बोलता है कि मैंने नहीं किया। तो खैर बाबा तो, लेकिन हम अपने आप को ही चाटा लगा लेते हैं। अगर हम बाबा के सामने है ना नहीं बताते, तो हम अपना ही समय श्वास संकल्प व्यर्थ गंवाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कुछ भी हो जाए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। जैसे कोई एक पेशेंट हो और वो, उसको कोई बीमारी हो, डॉक्टर को बताए ही नहीं तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही जाएगा, और हो सकता है कि ओम शांति हो जाए। उसी प्रकार यदि हमारे अंदर कोई पुराने स्वभाव, संस्कार, आदत, ऐसी कोई बीमारी है और हम बाबा को नहीं बताते हैं, अपने से जो बड़े हैं उनको नहीं बताते हैं, उनसे शिक्षा सावधानी आप निमित्त दीदी को बता सकते हैं, है ना, हमारे अंदर तो दीदी भी आपको हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। आप बाबा को, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को लिख कर दो, सच दिल से, अगर हम सच्ची दिल से बाबा को बताते हैं तो बाबा से हमें मदद शक्ति मिलती है। और एक मुरली क्या, दो तीन मुरली में बाबा ने एक महावाक्य उच्चारण किया, आप लोगों को याद होगा कि जो बच्चे रात में सोने के पहले सारे दिन का समाचार बाबा को सुना कर सोते हैं, क्या कहा होगा, उनको क्या होता है, इससे क्या फायदा, मन हल्का हो जाता है और योग अच्छा लगता है, योग में नींद नहीं आती, ऐसा योग निद्रा होती है। अच्छा देखिए, अब बाबा के महावाक्य सुनिए, कितना ऊंच बात बाबा ने बोली। बाबा ने कहा जो बच्चे रोज रात को सोने के पहले सारे दिन का समाचार बाबा को सुनाकर सोते हैं, वे अच्छा ठीक है, आप सब अच्छे बता रहे हैं, सबकी बात राइट है। बाबा ने कहा वे धर्मराजपुरी के सजाओं से बच जाएंगे, याद आया कुछ अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा। तो ये प्रश्न, और ये एक अव्यक्त मुरली में नहीं, दो तीन अव्यक्त मुरली में बाबा ने ऐसा कहा। तो एक टीचर बहन ने गुलजार दादी से पूछा कि दादी ये तो बहुत अच्छी बात है कि ना बाबा को बताना ही तो है ना, रोज बाबा को बता करके सोएंगे, हाँ? तो धर्म क्या सचमुच ऐसी बात है कि धर्मराजपुरी जाने से वो बच जाएगा, अगर रोज बाबा को बताए तो सचमुच वो धर्मराजपुरी में नहीं जाएगा। वो दादी से, बहन ने कहा दादी मैं इसका स्पष्टीकरण चाहती हूँ। तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई, कहा बाबा के बताने का मतलब ये नहीं कि आप रोज बाबा को बताते रहो, रोज ही गलती करते रहो। बाबा को बताने का मतलब ये है कि दिल से रियलाइज करते हुए कि बाबा ये मेरे से नहीं होनी चाहिए था, मेरे से हो गई और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना, तो फिर है ना। तो इस प्रकार से जब हम बाबा को बताते हैं तो मन हमारा पूरी तरह से हल्का हो जाता है और हम सहयोग। तो आज बाबा ने कहा अगर बार बार भूले होती है, हम कई बार कहते हैं कि हमने वायदा भी कर लिया, महसूस भी कर लिया, पत्र भी लिख करके बाबा के, है ना, पत्र भी लिख करके डाल दिया और बाबा के सामने दृढ़ संकल्प भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये मेरी जो पुरानी आदत है, ये जो पुराना स्वभाव संस्कार है, ये जो भूल है, ये बार बार इमर्ज हो जाता है। कईयों का ये एक संदेश में बाबा ने कहा था और इसका उत्तर बताया, कईयों की ये शिकायत है कि हमने सारी विधि कर ली लेकिन वो पुराना स्वभाव संस्कार हमारा मिटता ही नहीं है, वो इमर्ज हो जाता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, समस्या सामने आती है, सारा दृढ़ संकल्प करके, सब कुछ करके देख लिया, वायदा भी कर लिया, दृढ़ संकल्प भी कर लिया, लेटर भी सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी इस संस्कार के हम वशीभूत हो जाते हैं। तो आज बाबा ने सुंदर उत्तर बता दिया, क्योंकि क्यों भूले होती है, योग में कच्चे हैं। तो बाबा ने उसमें यही कहा, एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर बाबा ने कहा अगर सारी विधियां करके थक गए फिर भी आप बार बार भूले हो जाती है, पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, तो बाबा ने एक ब्रह्मास्त्र बताया। ब्रह्मास्त्र क्यों कहा, कि वो आप करेंगे विधि ना तो हो ही नहीं सकता कि वो उसका रिजल्ट ना आवे। बाबा ने कहा जैसे एक पेड़ है, पेड़ को हम तना से काटते हैं, लेकिन उसका जड़ अंदर में पड़ा रहा, बरसात पड़ी, धूप हुआ, तो फिर कल्ला निकल आया। क्यों निकल आया? क्योंकि मैंने उसके जड़ को निकाल करके नहीं फेंका था। तो पुराने स्वभाव संस्कार की बीमारी जो है, हमने ऊपर ये सारी विधि, जैसे कि मैंने ऊपर से तना काट दिए, लेकिन उसका अंदर में जड़ रहा, उसका बीज रहा। और फिर परिस्थिति आई, किसी ने गुस्सा किया, सामने से आया, ऐसी परिस्थिति बनी और फिर हमारे से निकल गया। तो बाबा ने कहा, अगर किसी संस्कार के बीज को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए बीज रूप स्टेज योग का अभ्यास। ठीक है ना? अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये हमारे अंदर से खत्म हो जाए तो उसके लिए कौन सा अभ्यास चाहिए? बीज रूप स्टेज से हम पुराने स्वभाव संस्कार के बीज को खत्म कर सकते हैं। जो आज बाबा ने कहा कि हाँ, योग में कच्चे हैं, कच्चे माना योग में हम बैठते हैं तो हमारा योग कैसे होता है हम सब जानते हैं, है ना? हम योग में बैठेंगे बाबा को याद करने, लेकिन हमारी बुद्धि भले एक मिनट के लिए तो हम परम धाम में पहुंच जाते हैं, बाबा से सकास लेते हैं, फिर दूसरे मिनट हम कहां कहां चले जाते हैं, कहां कहां चक्कर लगा करके आ जाते हैं, और सफेद लाइट हुई, उठ करके बैठ जाते हैं, हो गया योग। माताओं को अनुभव होगा ना कि बैठते हैं योग में, पहले तो एक मिनट मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परम धाम में हूं, फिर दूसरे मिनट क्या याद आता है, अरे भोजन भी तो बनाना था ना आज, सब्जी बनाना, किस चीज का बनाना है, टमाटर भी रखा है, आलू रखा है, चलो आज टमाटर का बना लेते हैं, और फिर कपड़े भी धुलाई करना है, फिर याद आया, नहीं नहीं मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, अरे अभी तो झाड़ू पोछा भी पड़ा हुआ है करने के लिए, ये भी करना है, इतना सारा कारोबार पड़ा है, तो बैठे थे योग में, लेकिन इस योग में क्या कर लिया, कपड़े भी धुलाई कर लिया, सब्जी भी बना ली, झाड़ू पोछा हो गया, सफेद लाइट हो गई, उठ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि हमने कोई लक्ष्य लेकर के नहीं बैठे, हम कोई संकल्प लेकर के नहीं बैठे, और ये हमारी दिनचर्या रोज की होती है, 10 साल 20 साल 30 साल, और हम यही कहते हैं कि योग में एकाग्रता नहीं होती, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, योग हमारा नहीं लगता। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज से आप एक संकल्प ले लें कि बिना कोई लक्ष्य लिए, बिना कोई संकल्प लिए, आप अपने आप आपको ही समझा दो, बिना कोई संकल्प लिए हमें योग में बैठना ही नहीं है। जब भी आप बैठो तो आप ये सोचो कि हमें करना क्या है, आधा घंटा बैठना, एक घंटा बैठना है, तो हमें करना क्या है इस एक घंटे में। बाबा ने इतनी सुंदर सुंदर विधियां, इतने सुंदर सुंदर अभ्यास ये किसके लिए बताए हैं? मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तो पहला क्या करना, ये संकल्प की, और दूसरा कि जितना भी समय मैं बैठूंगा योग का मैं संपूर्ण सुख लूंगा। मानो एक घंटे से योग चल रहा है और आपका आपको आधा घंटा ही समय मिला, तो आप ये संकल्प ले लो, इस एक घंटे का मैं संपूर्ण सुख मैं आधे घंटे में लूंगा, पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। तो जब हम कोई ना कोई संकल्प लेकर के बैठते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के बैठते हैं, तो हमारा योग फिर है ना। बाबा ने सुंदर सुंदर अभ्यास बताए हैं, आत्म अभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बीज रूपी स्थिति, पांच स्वरूपों का अभ्यास, है ना, सुदर्शन चक्र धारी बाबा ने कहा कभी बन जाओ, कभी चारों धाम को चारों धाम की यात्रा कर लो, है ना, ज्वाला स्वरूपी स्थिति, कितने है ना, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, कितने प्रकार के बाबा ने अभ्यास बताए हैं, आत्मा के सातों गुणों का अनुभव करना। तो आप बैठो, जैसे आपको आधा घंटा बैठना है तो ये बनाओ कि 10 मिनट हम आत्मा के सातों गुणों का अभ्यास करेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। दूसरे 10 मिनट में हम फरिश्ते स्वरूप के भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास करेंगे। फिर तीसरे 10 मिनट में हम परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तियां लेंगे, बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे। तो ऐसे लक्ष्य बना करके बैठो। दूसरी बात, जब योग में बैठते हो ना, तो एक नियम और बनाओ, आपको बहुत मदद करेगा, आप उसका रिजल्ट देखना। आप ऐसे जाकर के योग में बैठो, और या उस दिन की मुरली अंदर में आप रिवाइज करके फिर बैठो, इसका आप रिजल्ट देखना। क्योंकि हम सारा दिन व्यर्थ में रहे और हम जाकर के योग में बैठ गए, तो वही व्यर्थ अंदर में घूमना चालू हो जाता है। हम 5 मिनट योग को एक तरफ रख दें, 5 मिनट हम मुरली अंदर में रिवाइज कर लें, मुरली चिंतन कर लें, फिर योग में बैठें, आप देखना योग आपकी बहुत अच्छा, योग में पूरी एकाग्रता होगी। क्योंकि योग से, मुरली चिंतन से हमने अपनी बुद्धि को साफ कर लिया, स्वच्छ कर लिया। तो ये भी आप एक नियम बना सकते हो कि पहले अंदर में मुरली की पॉइंट, बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है, बाबा के एहसान उपकार को याद करें, प्राप्तियों को याद करें, मुरली की पॉइंट को याद करें, है ना। फिर माना कहने का भाव, अपने मन बुद्धि को हम ऐसा योग्य बनाएं, तब हम योग का अभ्यास करें। तो फिर जो बाबा कहते हैं, एक योगी आत्मा जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस स्थिति में चाहे, अपने मन बुद्धि को सहज एकाग्र कर सकता है। लेकिन कब? जब हमारा मन बुद्धि पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, और शक्तिशाली तब होगा जितना हम ज्ञान का मंथन चिंतन करेंगे, जितना हम अलग अलग ड्रिल करेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये भी बाबा ने कहा है, जो बच्चे 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं सारे दिन में बार बार, इससे मन बुद्धि शक्तिशाली बनती है। अच्छा, और बाबा ने आगे क्या कहा कि हाँ, किसी के भी नाम रूप में, और नाम रूप में फंसने वाले का योग लग नहीं सकता। प्रैक्टिकल बात देखो, बाबा ने कितनी प्रैक्टिकल बात बताई। आप देखो, अगर कोई में हमारा ज्यादा बुद्धि जाती है, ज्यादा ही उससे हमारा दोस्ती है, उसके बिना हम रहते नहीं हैं, तो वो भी याद आता है, और किसी से हमारी दुश्मनी है, अनबन है, मन मुटाव है, तो वो भी याद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि योगी आत्मा ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ना इतनी किसी से आप इतना हो जाओ कि 24 घंटा बस उसी, उसके बिना आपको अच्छा ना लगे। तो नाम रूप में फंसना, नाम रूप में फंसने की बीमारी, बाबा ने कहा सबसे कड़ी बीमारी है। हम बाबा को भूले ना तभी तो अच्छा। अच्छा, नाम रूप में फंसे क्यों? कोई ना कोई हम गुण विशेषता देखा है? ये बहुत अच्छा योग कराती है। आज भी बाबा ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, बहुत अच्छा योग कराती है। तो आप किसी के अच्छाई को देख करके उससे प्रभावित नहीं हो जाएं, और या किसी के अच्छाई देख करके उससे ईर्ष्या भी ना करें, दोनों बात है। अगर हम प्रभावित होते हैं तो हम बाबा को भूलते हैं, किसी के गुण विशेषता को देख करके। फिर क्या होना है, अंदर में खुशी हो, उसके उमंग उत्साह को बढ़ाएं, हाँ तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी विशेषता, और आगे आप बढ़ सकते हो। तो जब हमारे अंदर खुशी होती है किसी के गुण विशेषता को देखकर, तो वही गुण विशेषता हमारे जीवन में आ जाती है। और यदि हम किसी के गुण विशेषता को देख करके ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो गुण विशेषता हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। क्योंकि उसको देख करके नहीं, लेकिन उसके गुण विशेषता को देख करके हमने ईर्ष्या किया। और यदि चाहते हैं कि वो गुण विशेषता हमारे जीवन में आ जाए, तो आप खुश हों उसके गुण विशेषता को देखकर, उसके उमंग उत्साह को बढ़ाएं।
और बाकी प्रभावित भी नहीं होना है। अगर गुण विशेषता को देख करके आप प्रभावित होते हैं तो ये सोचो कि इसके अंदर जो गुण विशेषता है वो देन किसकी है, ये प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, भगवान की देन है। हमारे अंदर भी है ना, हम भी बाबा से योग लगा करके अपने अंदर ये विशेषता भर सकते हैं। तो बाबा ने कहा किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है और कौन से धुन में रहना है, 25 से पावन बनना है, निरंतर हमारी योग युक्ति स्थिति रहे इस धुन में रहना है, चलते फिरते उठते बैठते। तो योग युक्ति स्थिति रहने के लिए सिंपल सा अभ्यास, जैसे हम चल रहे हैं, चलते हुए अनुभव करें कि मैं फरिश्ता लाइट के शरीर में चल रहा हूं, मुझसे चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस फैल रहा है। कभी आप शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलो, कभी पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलो, कभी शक्तियों को, आप ये अपना पक्का कर लो कि जब भी मैं चलूंगा तो लाइट के शरीर में चलूंगा, प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलूंगा। जब भी बैठूंगा तो कहां बैठूंगा, भले हम शरीर हमारा कुर्सी पर बैठा है, शरीर हमारा सोफा पे बैठा है, शरीर हमारा बेड पे बैठा है, लेकिन हम कहां बैठेंगे, जब भी बैठेंगे छोटे छोटे अभ्यास, हम आत्मा राजा बनकर के भ्रकुटि रूपी तख्त पर ही बैठेंगे। तो भ्रकुटि रूपी तख्त पर बैठा, हाँ मैं आत्मा अकाल तख्त नसीन हूं, या बाबा के दिल तख्त नसीन हूं, बाबा के दिल रूपी तख्त पर बैठ जाओ, बाबा की गोदी में बैठ जाओ, बाबा के साथ में बैठ जाओ, फरिश्ता बनकर के वतन में बाबा के साथ बैठ जाओ। तो ये सुंदर सुंदर कुछ अभ्यास हम जोड़ लेते हैं ना, तो चलते फिरते हमारी, चलेंगे तो लाइट के शरीर में, बैठेंगे तो आत्मा राजा बन करके। इसी प्रकार आप एक एक कर्म में हम देखेंगे तो, देखेंगे तो क्या देखेंगे, आत्मा देख करके ही बात करेंगे। बहुत सुंदर अभ्यास, जैसे बाबा कहते हैं ना मनसा सेवा, तो आपकी ऑटोमेटिक मनसा की आप ये बना लो प्लान कि जो भी हमारे सामने आएगा, हमारी दृष्टि पड़ेगी तो खाली नहीं जाएगा, कोई एक आया तो मेरे दृष्टि से प्योर वाइब्रेशंस, दूसरा आया मेरी दृष्टि से शक्तियों के वाइब्रेशंस निकल कर इस आत्मा के ऊपर पड़ रही, तीसरा आया मेरी दृष्टि से शांति के वाइब्रेशंस। मानो ये नियम बना लो कि मेरी दृष्टि पड़ेगी तो हम ऐसे सिंपल साधारण रीति से नहीं, लेकिन अपनी दृष्टि से हम कोई ना कोई शक्तियों का हम इसको सामने वाले को वाइब्रेशंस देंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जो बाबा कहते बच्चे मनसा सकास, और सामने वाले को भी फील होगा कि भाई वो आपको कहेगा हम आपके पास आते तो बड़ा शांति का अनुभव होता है, हम आपके सामने आते तो बहुत अंदर में सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो आप अभ्यास कर रहे हैं ना, तो सामने वाले को भी वैसा अनुभव होगा। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा, सबसे बुरा काम, बाबा ने कहा इससे बुरा काम और कोई होता ही नहीं, क्या बताया। वैसे तो बाबा की मुरली के अनुसार रोज मुरली, बाबा के महावाक्य अलग, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, आपस में मुरली छोड़ना, नाम रूप में फंसना, हाँ इधर से आवाज आई, क्या बोला, हाँ आधा बताया आपने और पूरा बताइए। बाबा ने कहा आपस में लून पानी होकर सर्विस छोड़ देना, इससे बुरा काम और कोई होता है नहीं, है ना, था ना आज। अच्छा लून पानी क्यों हुए, आपस में हम लून पानी क्यों हुए, कई बार अंदर में आता ना, एक 97 या 98 के अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि जैसे आपको सेवा कहा गया, कोई आपकी टीचर बहन ने आपको सेवा बताई कि ये सेवा करना है, और आप सारा दिन सेवा करके आए और शाम को सेंटर पर पहुंचे, और आप अंदर में तो है ना भाई, मैं सेंटर पर सारा दिन सेवा करके आया तो बहन जी हमारी थोड़ी सी महिमा करेंगी,
और आपको किसी ने कुछ नहीं पूछा, फिर अंदर में आया, सारा दिन सेवा करके आए, मुरली में ऐसे सारा दिन सेवा करके आए और बहन जी ने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। क्या फायदा सेवा करने से, हाँ अपने घर में बैठो, है ना। ऐसे आया हमारे अंदर विचार कि सारा दिन सेवा किया और बहन जी ने एक बात भी नहीं पूछा, अच्छा थैंक्स भी नहीं दिया, हाँ तुम इतना सेवा करके आए, एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं तो पूछ रहा हूं, मेरी डिक्शनरी में तो तुम्हारा नाम है, हा? और तुम चाहते हो कि टीचर बहन हमारी महिमा करे, हा? कोई महिमा करे या ना करे, हा? बाबा तो देख रहा है, बाबा तो जान रहा है ना मैं सेवा किया। हम कहते नहीं, थोड़ी बहुत तो थोड़ा तो है ना महिमा तो होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई इतनी सेवा किया तो थोड़ा तो कोई। तो बाबा ने कहा, देखो ये वरदानी युग है, आप जो चाहोगे वही हो जाएगा, अगर आप नाम मान शान महिमा चाहते हो तो मिल जाएगा, क्योंकि वरदानी युग है, वरदाता बाबा है। लेकिन घाटा किस में हो जाएगा, प्राप्ति में। तो बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो, 21 जन्मों का भाग्य चाहिए या अल्पकाल का नाम मान शान चाहिए, क्या चाहिए? और जिन्होंने नहीं बोला उनको क्या चाहिए? वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। 21 जन्मों का भाग लेकिन थोड़ा सा नाम मान शान भी। बाबा ने तो कहा, दोनों में से एक ही चॉइस कर लो, या तो 21 जन्मों का भाग्य कर लो। और बाबा ने कहा कि तुमने सेवा की है, तुम्हारा नाम मान शान महिमा सब कुछ होगा। लेकिन हम कई बार इतने उतावले हो जाते हैं ना, मैं अपने मुख से ही चालू कर देते हैं, वो ठीक नहीं होता है, मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, है ना। तो जहां मैंपन आता है, मैंने किया, वहां समझो सेवा का कच्चा फल खा लिया। तो क्या याद रहे, बाबा ने मुरली में कहा, अगर मैंपन आया, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, हाँ मैंने इतना सेवा किया, इतना धन दिया, आदि आदि, तो बाबा ने कहा, चाहे रात दिन सेवा कर लो, भूख प्यास सहन करके सेवा कर लो, है ना, लेकिन 95% कट कर दिया। और यदि आपने ये बुद्धि में रखा, नहीं बाबा ने कराया, करन करावन हार बाबा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, वही कर भी रहा है तो वही करा भी रहा है, करा भी वही रहा तो कर भी वही रहा है, अगर ये बुद्धि में है तो आप समझो सेवा में 100% मार्क्स जमा कर लिया। हमारे अंदर तो ये भी शक्ति नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, करा तो रहा है लेकिन कर भी वही रहा है। तो बाबा करा रहा है तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल गया। तो ये सदैव बुद्धि में रहे। अच्छा, अब हम सभी पूरी तरह से अपने आप को इस देह और देह की दुनिया से डिटैच करेंगे। 2 मिनट के लिए पूरा अपने आप को देखेंगे, मैं लाइट के शरीर में, स्वयं को देखेंगे वतन में बाप दादा के सम्मुख, फरिश्ते बन करके वतन में पहुंच जाएं, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं, वे मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, मैं आत्मा नजर से निहाल हो रही हूं, बाप दादा की पावरफुल दृष्टि से मैं आत्मा अपने आप को भरपूर कर रही हूं। देखेंगे बाप दादा का वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर, बाप दादा के वरदानी हस्तों से प्योर वाइब्रेशंस निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे विजयी रतन आत्मा भाव, सफलता मूर्त आत्मा भाव, सदा निर्विघ्न आत्मा भाव, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, शांति। और आज बाबा ने आगे क्या कहा, बाबा आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर आए हैं, वैकुंठ, हाँ, सौगात में लाए हैं। आप सोचिए, तो ऐसे ऐसे महावाक ना रोज हमें मुरली से नोट कर लेना चाहिए। कितनी नशा कि स्वयं भगवान हमारे लिए सौगात में वैकुंठ लेकर के आए हैं। ये सौगात पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा है, हैं? वैकुंठ और सौगात के रूप में, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है तो कोई छोटी मोटी चीजें थोड़ी देगा, से जो मिलेगी है ना बड़ी चीजें देगा ना, तो इससे बड़ी चीज सौगात में तो और कुछ हो नहीं सकती। तो इस सौगात में तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख, जन का भी सुख, तो कितना ऊंचा सौगात, स्वर्ग की बादशाही। तो देने वाला कौन है, वो भी ऊंचे ते ऊंचा और प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची, और लेने वाले वो भी ऊंचे, हम बच्चे भी तो ऊंचे ते ऊंचे है ना, है ना। तो दाता देने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा, हाँ, और प्राप्ति भी, और प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची, और पढ़ाई कैसा है वो भी ऊंचे ते ऊंचा, पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंची, पढ़ाई से प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची, हाँ, पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा, पढ़ने वाले भी ऊंचे ते ऊंचे। तो एग्जाम कैसा आना चाहिए, नीचा छोटा आना चाहिए एग्जाम। सब कुछ ऊंचा लेना चाहते हैं और एग्जाम के समय बाबा एग्जाम छोटा आना चाहिए, तो एग्जाम भी तो वैसे ही आएगा ना। एग्जाम के समय तो हम घबरा जाते हैं, बाबा बड़ी परीक्षा आ गई, बाबा संभालो, बाबा ये करो, हम बाबा को पुकारने लगते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं, भले एग्जाम है ना,
सब कुछ ऊंचा है तो एग्जाम ऊंचा आएगा, लेकिन कौन है तुम्हारे साथ में, ये तो सोचो। अच्छा एग्जामिनर कौन है? वो हमारा ही बाप है ना, नकल करने की पूरी छूट दे दी है करो नकल पूरी दी है कि नहीं दी? विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई और नकल करने की पूरी छूट, लेकिन हम ऐसे हैं कि नकल करने की भी, बड़े नशे से बता रही माता नकल करने की भी अकल नहीं है। अब देखो नकल करने की ही तो बात है ना, बाबा को हमें नकल करना है तो भी हम क्या करें कैसे करें, नकल करना भी हमारे लिए मुश्किल है। हम कहते हैं हम मास्टर नॉलेजफुल, विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा बच्चे कुछ आपको केवल नकल ही तो करना है, बाबा को नकल ही तो करना है, फॉलो करना है, बस जैसे बाबा ने किया वैसे करते जाना है। बाबा पास भी दानर बन करके दिखा दिए ना, तो हमें भी यदि बाप समान बनना है पास भी दानर, तो बाबा को नकल करते जाना है। अच्छा फिर आगे बाबा ने क्या कहा, अपनी भविष्य बनाने की युक्ति, हमारा भविष्य महान कैसे बने, श्रेष्ठ कैसे बने। तो इसके लिए हम एक अपने आप से, जैसे आज बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, तो जैसे हम योग में बैठते हैं वैसे हम अपने आप से बातें करें, एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करें, स्वचिंतन करें, स्वदर्शन करें। दूसरा कोई कितना भी समझाएगा तो थोड़ा हमें अभिमान भी आ सकता है, हमें सब पता है, लेकिन हम अपने आप को खुद समझाते हैं, खुद के खुद टीचर बनते हैं, तो अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा से पूरा वर्षा लेना है और याद करने की मेहनत करनी है और आपस में लून पानी होकर के सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, सर्विस छोड़ना नहीं है। वरदान क्या था? अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर को समाप्त करने वाले अनुभवी मूरत भव। तो बाबा ने कहा अनुभवी मूरत बनना ये क्या है? अनुभव, अनुभव क्या है? सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की बातों को, समस्याओं को, विघ्नों को हम सहज क्रॉस कर सकते हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि एक एक बात के ज्ञान गुण शक्तियों के अनुभवी मूरत बनो, जो बाबा कहते हैं उसको अनुभव में लाओ, और जो खुद अनुभवी मूरत होगा वो दूसरों को भी अनुभव करा सकेगा। एक बार जानकी दादी सुना रही थी कि देखो रोज हम मुरली में सुनते हैं ना, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, लेकिन अनुभव में ना आने के कारण हम क्या करते हैं, सुनते हैं जानते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप हूं, रोज मुरली में सुनते हैं, और कोई हमारे सामने आकर के तेज ऊंची आवाज से बात करने लगा, गुस्सा करने लगा, तो उस समय हम शांत स्वरूप रहते हैं? उस समय हम अपने आप को जाना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं? तो उस समय ये बात प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की बात है। जब कोई ऊंची ऊंची आवाज में बात करने लगे, गुस्सा करने लगे, तब हमें अपने आप को बताना है तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, है ना, तुम्हें अशांत नहीं आना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा, अशांत कैसे हो सकता हूं? तो उसको भी शांति का हमें दान देना है। वो बेचारा परवश है, अधीन है, है ना, वो अशांत होकर के बोल रहा है तो उसकी बैटरी जरूर डाउन है ना। अभी देखो रेडियो की बैटरी डाउन हो जाएगी तो उसमें की आवाज कैसी निकलेगी, मीठा खड़खड़ाहट की आवाज निकलती है ना। तो अगर कोई इस प्रकार के आवाज निकालता है तो आप उस समय ये सोचो ये बेचारे की बैटरी डाउन हो गई है, है ना, और इसको देख करके हम क्या करते हैं, उसको देखकर अपनी भी बैटरी डाउन कर लेते, तुम्हारी डाउन मेरी भी डाउन, हम तुम एक जैसे, लेकिन हम अपनी क्यों डाउन करें, हमें तो और उसके ऊपर रहम आना चाहिए और उसको शक्ति देना चाहिए कि हाँ बेचारे की बेटी कुछ चार्ज हो जाए जो कि उसके मुख से मीठा बोल निकले, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा एक एक गुण के अनुभवी मूर्त बनो, तो हम दूसरों फिर दूसरे हमसे अनुभव कर सकेंगे। और स्लोगन में बाबा ने क्या कहा, एक दूसरे को देखने के बजाय स्वयं को देखो और स्वयं का परिवर्तन करो। स्वयं को देखना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, है ना। तो लेकिन हमारी आदत क्या है, हा? और बाबा ने कहा अच्छा ठीक है तुम्हें दूसरे को देखने की आदत है तो मुझे देखो ना। बाबा कहते मैं बैठा हूं ना, आप मुझे क्यों नहीं देखते हो, जिसके अंदर कमी कमजोरी उसको देखते क्यों हो, हा? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा देखो हमारी दृष्टि अपने से बड़ों के ऊपर जाती है और फिर हमारे अंदर क्या आती है, अच्छा मैं तो समझा था ये बहुत ज्ञानी योगी आत्मा है, बहुत महारथी आत्मा है, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन आज पता चला इनके अंदर भी कमी है, ये भी आवाज से बोलते हैं, ये भी गुस्सा करते हैं। तो प्रैक्टिकल बात बाबा ने उसमें क्या बताई, ये नोट कर लेना। हम मेरे सामने बाबा की मुरली चली थी, मुझे कभी मुरली पॉइंट भूलती नहीं। बाबा ने कहा अंत में जब रिजल्ट आउट होगी तो वो जिसको आप देखें ना कि ये इतने पुराने हैं इतने, है ना, और तो उसने अपने जीवन में जो त्याग तपस्या सेवा से जो जमा का खाता है उस आधार से तो वो पास हो जाएगा। लेकिन आप नए नए आए हैं और आपने एक कमी नोट की तो आप फेल हो जाएंगे, अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी भूल से दूसरे को नहीं देखना, हा? कभी कहा है कि भाई बहनों को फॉलो करो, हा? फॉलो फादर का ना, फॉलो फादर फॉलो मदर, तो हमें बाबा को देखना है और बाबा को ही फॉलो करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य बाप समान बनना है ना, तो बाप समान तब बनेंगे जब बाबा को देखेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कभी भी दूसरों को ना देख, स्वयं को देखो, बाबा को देखो और अपने आप को परिवर्तन करो। तो ये थी आज की मुरली। तो ऐसे ही सेंटर खोलने की बात, हाँ ये भी बात बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताया कि अगर हम अपनी मन मत से तो उसमें कोई आपका वो अपनी मनमत, हमने राय सलाह नहीं दी बड़ों से दीदियों से, हमने हम बात हमने सेंटर खोल लिया, खोलो लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार, बड़ों की आज्ञा के अनुसार, है ना। तो उसमें बाबा की दुआएं, बड़ों की दुआएं, है ना, सबकी दुआएं, फिर उसका मार्क्स जमा होता है। तो आप इस पर एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसके ऊपर चिंतन करना, बाबा की मुख्य मुख्य श्रीमत क्या है, ठीक है। रोज रात में सोने के पहले नोट माना चेक करना, नोट कर लो फिर चेक करना क्या इस श्रीमत प्रमाण हमारी दिनचर्या रहती है। मुख्य मुख्य श्रीमत 8-10 बातें नोट करके रखो और रोज रात में सोने के पहले चेक करो इस श्रीमत के प्रमाण हमारी दिनचर्या रही। दूसरी बात, हम श्रीमत में कहां कहां मनमत मिक्स कर देते हैं, बड़े रायल तरीके से मिक्स करते हैं, है श्रीमत लेकिन श्रीमत में हम मनमत कैसे मिक्स करते हैं, किस प्रकार से अमृत वेले से आप देखेंगे, इसके ऊपर भी चिंतन करना कि बाबा की श्रीमत में हम किस किस प्रकार से मनमत मिक्स करते हैं। तो इस प्रकार से रोज आप मुरली सुनो और मुरली सुनने के बाद, है ना, उसको चिंतन करो और फिर अपने आप से पूछो आज जो बाबा ने कहा वो मैं कहां तक कर रहा हूं। सुनना है लेकिन सुनने के साथ साथ करना है, सुनने का मतलब करना, ठीक है ना।
हम पूछेंगे कि भाई कौन कौन मुरली सुना, तो सब लोग खड़े हाथ खड़ा करेंगे, हाँ मैंने मुरली सुना। हा? लेकिन सुनने का मतलब क्या होता है? कई बार माताएं बोलती है ना कि मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, कितना भी कहो कितना भी बोलो लेकिन सुनता ही नहीं है। माँ बोल रही है, बेटा सुन भी रहा है, फिर भी माँ बोला कि मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं। कब? जब उस बेटे ने किया नहीं। हमने मुरली सुनी और किया नहीं तो अब सोचो कि मैंने क्या मुरली सुना। अगर हमने किया नहीं प्रैक्टिकल में, तो वैसे तो हम चार्ट में हाँ मुरली सुनी, हाँ सुनी, आप नोट करो अगर आपने उस दिन नहीं किया तो आज मुरली मैंने नहीं सुनी। जिस दिन आपने किया उसी दिन लिखो हाँ आज मुरली सुनी। तो सुनने का मतलब करना, क्या है करना। तो आज से क्या करना है? मुरली है ना, हाँ मनन करना है और साथ साथ में व्रत ले लेना है कि जो बाबा ने कहा वो मुझे करके दिखाना है। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।